एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो पढ़ने वालों को अक्सर हैरान कर देती है, शायद थोड़ा परेशान भी, और सोचने पर तो यकीनन मजबूर करती है।
हाँ बिल्कुल,
हारुकी मुराकामी का मशहूर उपन्यास द विंड अप बर्ड क्रॉनिकल सुना है? कमाल की किताब है, लेकिन थोड़ी पेचीदा भी
है। तो कई लोग इसे मुराकामी का सबसे बड़ा काम, उनका मैग्नम ओपस मानते हैं।
हाँ, मैंने भी सुना है।
ये उन किताबों में से हैं जो आपको एक बार पकड़ लें तो जल्दी छोड़ती नहीं। एक अजीब सी कशिश है इसमें, ये तो मानना पड़ेगा।
तो आज हम इसी कशिश को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्या है इस उपन्यास में जो इसे इतना यादगार बनाता है? कहाँ छुपी हैं इसकी परतें? हम कहानी की गहराइयों में झांकेंगे, किरदारों के सफर को समझेंगे और उन बड़े सवालों पर बात करेंगे जो ये किताब उठाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे सफर को।
जरूर।
सबसे पहले लेखक और इस किताब के माहौल पर थोड़ी बात हो जाए। मुराकामी के बारे में थोड़ा बताएं।
हाँ, हारुकी मुराकामी 1949 में क्योटो में जन्म हुआ। आज तो खैर दुनिया के सबसे जाने माने लेखकों में से हैं।
हाँ, नाम तो बहुत सुना है।
उनकी पहचान ही उनकी अनोखी शैली है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जापानी और पश्चिमी रंग, मतलब जैज संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, हॉलीवुड फिल्में,
अच्छा,
हाँ, और रेमंड चैंडलर या कफ्का जैसे लेखकों का असर, इन सबको मिलाकर अपना एक बिल्कुल नया, एक अलग ही रंग बना लिया हो।
और उन्हें जादुई यथार्थवाद का उस्ताद भी कहा जाता है ना? मतलब असलियत में जादू इस तरह घुल मिल जाता है कि पता ही नहीं चलता।
सही कहा, बिल्कुल। उनकी कहानियों में अक्सर एक आम सी दिखने वाली जिंदगी होती है, सतह पर सब नॉर्मल, लेकिन उस सतह के ठीक नीचे एक और दुनिया धड़क रही होती है, थोड़ी अजीब, कभी कभी डरावनी और पूरी तरह जादुई।
और कहानी सुनाने वाला वो कौन होता है अक्सर?
कहानी सुनाने वाला अक्सर, मतलब उनके कई उपन्यासों में 30-35 साल का एक आम सा आदमी होता है, थोड़ा अकेला सा, थोड़ा खोया हुआ सा, पैसिव सा।
हाँ, ये पैटर्न मैंने देखा है।
और फिर उसकी इस शांत, थोड़ी नीरस जिंदगी में कोई अजीब सी घटना होती है, कोई अनजाना फोन कॉल, या जैसे इस किताब में अचानक बिल्ली का गायब हो जाना और बस सब कुछ बदल जाता है।
ये तो मुराकामी का स्टाइल है। मैंने उनकी नॉर्वेजियन वुड या काफ्का ऑन द शोर में भी कुछ ऐसा ही महसूस किया है। वो अक्सर किस्मत, पहचान की खोज,
पहचान की खोज, बिल्कुल।
इतिहास के भूले बिसरे जख्मों का असर और इस टूटी फूटी दुनिया में सच्चे रिश्तों की तलाश जैसे मुद्दों को छूते हैं।
बिल्कुल। और द विंड अप बर्ड क्रॉनिकल में ये सारे रंग और भी गहरे हो जाते हैं। ये किताब मूल रूप से जापानी में निजीमा की दोरी कुरुनी कुरु नाम से आई थी 1994-95 में, तीन हिस्सों में।
अच्छा, तीन हिस्सों में।
हाँ, और अंग्रेजी में ये 1997 में आई, और इसने मुराकामी को दुनिया भर में एक नई पहचान दी। कई लोग मानते हैं कि यही उनकी कला, उनका स्टाइल अपने शिखर पर पहुंचा।
और ये किसी एक खांचे में फिट भी नहीं होती शायद। मैंने सुना है इसमें जासूसी कहानी जैसा कुछ है।
है पर लेकिन कोई जासूस नहीं, कोई पक्का जवाब नहीं।
हाँ, जासूसी का फ्लेवर है पर सुलझने वाली मिस्ट्री नहीं। इतिहास की परतें हैं, जापान के अतीत के कुछ कह सकते हैं काले पन्ने भी खुलते हैं।
फिर वो अति यथार्थवादी सपनों जैसी दुनिया है, और साथ ही ये सवाल कि हम कौन हैं, हमारी चेतना क्या है, ये सब।
समझ गया, यानी कई विधाओं का मिश्रण है ये।
हाँ, आपने एकदम सही पकड़ा, ये सब कुछ है इसमें। इसीलिए इसे पढ़ना एक अनुभव है, सिर्फ कहानी पढ़ना नहीं। एक तरफ ये आज के भागते दौड़ते चीजों के पीछे पड़े समाज पर एक टिप्पणी है, जहां शायद आत्मा कहीं खो गई है,
आध्यात्मिक खालीपन।
हाँ, दूसरी तरफ ये इशारा करती है कि अगर हमें आज खुद को समझना है तो इतिहास के उन भूतों का सामना करना पड़ेगा जिन्हें हम शायद भुला देना चाहते हैं।
तो कहानी शुरू कैसे होती है? ये भूत और ये जादू एकदम से सामने आ जाते हैं या धीरे धीरे?
नहीं, एकदम से नहीं। शुरुआत तो बड़ी आम, बल्कि रोजमर्रा की लगती है। हम मिलते हैं नायक तोरू ओकाडा से।
तोरू ओकाडा, ठीक है।
30 के पार हैं, हाल ही में नौकरी छूटी है, टोक्यो के एक शांत बाहरी इलाके में पत्नी कुमिको के साथ रहता है। सब कुछ बड़ा साधारण सा है। वो इत्मीनान से स्पेगेटी बना रहा है, रोसिनी का ओपेरा सुन रहा है।
एकदम शांत माहौल, लगता ही नहीं कुछ होने वाला है।
बिल्कुल। लेकिन फिर इस शांति में दरारें पड़नी शुरू होती हैं। पहले एक अजीब सा फोन कॉल आता है, एक अनजान औरत का, जिसकी बातें थोड़ी अजीब हैं, थोड़ी सेक्सुअली चार्ज्ड। और फिर उनकी पालतू बिल्ली गायब हो जाती है।
बिल्ली गायब हो जाती है?
हाँ, और मजे की बात यह कि बिल्ली का नाम है नोबोरू वटाया।
नोबोरू वटाया, ये नाम तो,
हाँ, ये कोमिको के भाई का भी नाम है, और तोरू उसे जरा भी पसंद नहीं करता।
अच्छा,
तो बिल्ली का गायब होना सिर्फ बिल्ली का गायब होना नहीं है, ये किसी बड़ी चीज की शुरुआत है।
हाँ, यहीं से धागा खुलना शुरू होता है। बिल्ली की तलाश करते करते तोरू को एहसास होता है कि कुछ और भी है जो गायब हो गया है या हो रहा है। जल्दी ये तलाश बिल्ली से बढ़कर पत्नी कुमिको की तलाश बन जाती है।
कुमिको भी गायब हो जाती है
अचानक, रहस्यमय तरीके से। पीछे छोड़ जाती है एक चिट्ठी जो मतलब भावनाओं से ज्यादा पहेलियां लिए हुए हैं, बहुत दूर की गूढ़ सी।
और इसका भी कुमिको के भाई नोबुरू अटाया से कोई कनेक्शन है?
सीधा कनेक्शन। नोबुरू अटाया कहानी का एक अहम किरदार है, हालांकि ज्यादातर वो पर्दे के पीछे रहता है।
अच्छा।
वो एक मशहूर अकादमिक है, मीडिया में छाया रहता है, बाद में राजनीति में भी आता है। बाहर से बड़ा चमकीला, बड़ा सफल, लेकिन अंदर से एकदम खोखला और खतरनाक।
तो वो जापानी समाज की उस ऊपरी चमक और अंदरूनी भ्रष्टाचार का प्रतीक बन जाता है एक तरह से, और कुमिको का गायब होना कहीं ना कहीं उससे जुड़ा है।
तो फिर तोरू क्या करता है? मतलब पुलिस के पास जाता है, कोई जासूस वगैरह लगाता है?
नहीं नहीं, यही कहानी मुराकामी की हो जाती है। तोरू की खोज कोई सीधी साधी जांच नहीं है, वो टोक्यो के सड़कों पर सुराग नहीं ढूंढता।
तो फिर
उसकी यात्रा उसे अजीबोगरीब लोगों से मिलवाती है, भविष्यवाणी जैसे सपनों में ले जाती है, इतिहास की अंधेरी गलियों में घुमाती है। ये एक बाहरी सफर से ज्यादा एक अंदरूनी सफर बन जाता है।
अच्छा, अंदरूनी सफर।
हाँ, सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि कुमिको कहाँ है, बल्कि ये कि हमारी जिंदगियों को कौन सी अनदेखी ताकतें चला रही हैं, और क्या हम उन ताकतों से लड़कर अपनी असली पहचान वापस पा सकते हैं।
और इस सफर में उसे कौन कौन मिलता है, ये अजीबो गरीब लोग कौन है?
कई दिलचस्प किरदार हैं। एक है मे का सहारा, एक जवान लड़की, थोड़ी बागी सी, थोड़ी खोई हुई, पास की विग फैक्ट्री में काम करती है और मौत के बारे में अजीब बातें सोचती रहती है।
विग फैक्ट्री, मौत, अजीब कॉम्बिनेशन है।
हाँ, वो तोरू की एक अनचाही सी दोस्त बन जाती है और चीजों को बड़े सीधे सपाट तरीके से देखती है। फिर हैं कानो बहने।
कानो बहने,
माल्टा कानो, जो पानी से जुड़े रहस्यमय काम करती है और हमेशा 60 के दशक की लाल विनाइल टोपी पहने रहती है।
पानी से जुड़े काम मतलब?
मतलब वो चेतना और याददाश्त के प्रवाह जैसे मामलों से निपटती है। और उसकी बहन है क्रिटा कानो, एक पूर्व वेश्या जिसका दावा है कि नोबुरू वटाया ने उसकी आत्मा को मैला कर दिया है, अपवित्र कर दिया है।
ये तो बहुत ही डार्क लग रहा है।
है। और एक फौजी का भी जिक्र आता है, लेफ्टिनेंट मामिया।
हाँ, आपने बताया था।
एक बूढ़े पूर्व सैनिक जिनके पास दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मंचूरिया मंगोलियाई सीमा पर हुई भयानक लड़ाइयों की उफ दर्दनाक यादें हैं, नोमुन हान घटना की। उनकी कहानियां तोरू के सामने इतिहास का एक ऐसा पन्ना खोलती हैं जिसे जापान शायद भुलाना चाहता है। हर किरदार जैसे तोरू को पहेली का एक नया टुकड़ा देता है
और उसकी अपनी निजी मुश्किल को इतिहास, हिंसा और किस्मत की एक बड़ी गहरी नदी से जोड़ देता है।
बिल्कुल बिल्कुल, यही
तो। इन सब किरदारों के बीच तोरू ओकाडा खुद कैसे बदलता है? वो जो शुरू में थोड़ा निष्क्रिय खोयावासा था,
वही तो इस कहानी का दिल है, उसका केंद्रीय बिंदु। शुरुआत में तोरू वाकई में मुराकामी का टिपिकल हीरो है, शांत, थोड़ा कटावासा, जिंदगी जैसे उसे भागकर ले जा रही हो, वो बस बह रहा है। लेकिन पहले बिल्ली और फिर पत्नी के गायब होने से जैसे उसे एक झटका लगता है, उसकी वो निष्क्रियता टूटती है।
अच्छा।
वो अब सिर्फ स्पेगेटी पकाने वाला आदमी नहीं रहता, वो कदम उठाने लगता है, ऐसे कदम जो अजीब हैं, कभी कभी खतरनाक भी।
और उसे ये हिम्मत कहाँ से मिलती है? क्या चीज उसे ड्राइव करती है?
शायद कुमिको के लिए उसका प्यार, उसे वापस पाने की इच्छा उसे आगे धकेलती है, और इसके लिए उसे उतरना पड़ता है।
उतरना पड़ता है कहाँ?
सचमुच में भी, और एक तरह से अंदर की गहराइयों में भी। वो पड़ोस के एक वीरान घर के आंगन में एक सूखा कुआं ढूंढ लेता है और उसमें वक्त बिताना शुरू कर देता है।
एक सूखा कुआं वीरान घर में, वहां क्या करता है वो?
वो कुआं जैसे उसका अभयारण्य, उसका ठिकाना बन जाता है, दुनिया की भागदौड़ से दूर। लेकिन वो सिर्फ एक शांत जगह नहीं है।
तो क्या है
वो? जैसे एक दरवाजा है, एक पोर्टल, चेतना के दूसरे स्तर तक पहुंचने का। वहां बैठकर ध्यान लगाने से वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है।
दूसरी दुनिया? कैसी दुनिया?
एक अति यथार्थवादी दुनिया, जहां वो नोबुरू वटाया की उस अनदेखी अमूर्त बुराई का सामना करता है।
और इसका कोई निशान भी पड़ता है उस पर, फिजिकली?
हाँ बिल्कुल, कुएं में एक गहरे अनुभव के बाद उसके गाल पर एक नीला काला सा निशान बन जाता है।
नीला काला निशान?
हाँ, जैसे कि वो उस दूसरी छिपी हुई दुनिया का ठप्पा हो। ये निशान कहानी में आगे चलकर और भी मायने रखता है। उसकी कुछ खासियतें भी सामने आती हैं।
अच्छा,
कुल मिलाकर उपन्यास के अंत तक तोरू वो आदमी नहीं रहता जो शुरू में था। वो एक कह सकते हैं एक शांत योद्धा बन चुका है, जिसने न सिर्फ अपनी पत्नी को खोजने की कोशिश की है, बल्कि अपने परिवार और अपने देश के अंधेरे अतीत का भी सामना किया है।
तोरू की यात्रा तो समझ आती है, एक तरह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन है ये, लेकिन कुमिको का क्या? वो तो ज्यादातर कहानी में है ही नहीं, गायब है, उसका पक्ष कैसे सामने आता है?
कुमिको एक पहेली है, कहानी का केंद्र भी है और उसकी सबसे बड़ी गैर मौजूदगी भी।
हाँ, ये विरोधाभास है।
वो एक खालीपन छोड़ जाती है जिसे तोरू भरने की कोशिश करता है। हम उसे तोरू की यादों, उसकी छोड़ी हुई चिट्ठियों और दूसरों की बातों के जरिए ही जान पाते हैं। उनके रिश्ते में प्यार तो था, लेकिन शायद गहरी बातें, मुश्किल बातें कहने की जगह नहीं थी, कम्युनिकेशन गैप था।
ऐसा क्यों? क्या छुपा रही थी वो? कोई राज था?
हमें धीरे धीरे पता चलता है कि कुमिको अपने परिवार, खासकर अपने भाई नोबोरू बटाया से जुड़ी किसी गंदगी या मैलेपन का बोझ ढो रही थी। उसे लगता था कि वो भी उस गंदगी का हिस्सा बन गई है।
गंदगी, मैलापन, किस तरह का?
ये थोड़ा अस्पष्ट रखा गया है, लेकिन ये एक तरह का आत्मिक या नैतिक मैलापन है जो नोबोरू बटाया से फैलता है। उसका गायब होना शायद तोरू से बेवफाई नहीं, बल्कि खुद को बचाने की और शायद तोरू को भी उस गंदगी से बचाने की एक दर्दनाक कोशिश थी।
ओह, तो वो एक तरह से पीड़ित भी है?
पीड़ित भी है और एक खामोश ताकत भी। ये जटिल है।
और ये गंदगी या मैलापन सीधे नोबोरू वटाया से जुड़ा है, वो किस तरह की बुराई का प्रतीक है? आपने कहा वो टिपिकल विलन नहीं है।
हाँ, नोबोरू वटाया कोई फिल्मों वाला विलन नहीं है जो बंदूक लेकर घूमता हो। वो आज के जमाने की बुराई है, चिकनी चुपड़ी, ऊपर से चमकदार लेकिन अंदर से सड़ी हुई।
जैसे
वो मीडिया का दुलारा है, बुद्धिजीवी है, फिर राजनेता बन जाता है, लेकिन असल में वो भावनाओं से खाली है। शक्ति, पावर, उसके लिए सब कुछ है, और वो ताकत लोगों को, खासकर औरतों को, मानसिक और आत्मिक रूप से तोड़कर उन्हें मैला करके हासिल करता है।
उसे सतह का आदमी भी कहा गया है शायद।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए गहराई या असलियत मायने नहीं रखती। सब कुछ ऊपरी है, दिखावा है। उसकी बुराई ठंडी है, उसमें कोई जुनून नहीं। वो औरतों का इस्तेमाल खुशी के लिए नहीं, बल्कि उनके वजूद को खोखला करने, उन्हें अपने जैसा बनाने के लिए करता है।
बाप रे,
तोरू की लड़ाई उससे शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर होती है, सपनों और ध्यान की उस दूसरी दुनिया में। वो प्रतीक है उस समाज का जिसने अपना इतिहास और अपनी रूह दोनों भुला दी हैं।
ये तो काफी गहरा और उलझा हुआ जाल है। कहानी आगे कैसे बढ़ती है? क्या तोरू कुमिको को ढूंढ पाता है? ये सब होता कैसे है?
कहानी तीन हिस्सों में बटी है, जैसा मैंने बताया, और हर हिस्से में पहेली की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। पहले हिस्से में द थीविंग मैगपाय, तोरू की दुनिया बिखरती है, बिल्ली गायब, अजीब फोन कॉल्स, मेक का सहारा और कानों बहनों से मुलाकात,
और वो फौजी की कहानी भी।
हाँ, लेफ्टिनेंट मामिया का परिचय और उनकी वो कुएं वाली भयानक कहानी। इतिहास का दरवाजा खुलता है और फिर कुमिको गायब हो जाती है, तोरू के पुराने जीवन का अंत।
और दूसरा हिस्सा
बर्ड एज प्रॉफिट, उसमें तोरू उस सूखे कुएं की खोज करता है, उसे ध्यान और चेतना के दूसरे तल तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करता है। कुएं में गहरा अनुभव होता है। वो दीवार से गुजरकर एक अंधेरे होटल के कमरे में पहुंचता है।
दीवार से गुजरकर?
हाँ, जादुई यथार्थवाद। वहीं उसके गाल पर वो नीला काला निशान बनता है, और हमें क्रीटा कानो की कहानी पता चलती है कि कैसे नोबोरू ने उसे अपवित्र किया। मामिया की और चिट्ठियां आती हैं, युद्ध की और भयावहता सामने आती है, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय आघात का रिश्ता गहरा होता जाता।
और तीसरा हिस्सा द बर्ड कैचर, क्या वहीं सब कुछ सुलझता है?
सुलझता है, पर मुराकामी के अंदाज में, मतलब सीधे सीधे जवाब नहीं मिलते। तोरू की मुलाकात नटमेग अकासाका और उसके गूंगे बेटे सिनेमन से होती है।
नटमेग और सिनेमन, ये कौन है?
नटमेग एक डिजाइनर है, बहुत अमीर। वो तोरू के निशान में खास शक्ति देखती है और उसे अजीब सा काम देती है, अमीर औरतों का इलाज करना।
इलाज करना? कैसा इलाज?
ऐसी औरतें जो शायद कुमिको जैसी ही किसी अंदरूनी बीमारी, किसी दाग से जूझ रही हैं। इससे तोरू को पैसा और थोड़ी आज़ादी मिलती है। उसे नोबोरू वटाया के बढ़ते असर का भी पता चलता है, जो अब राजनीति में बड़ा सितारा बन रहा है।
और फिर आखिरी टकराव कुएं में?
हाँ, तोरू आखिरी बार कुएं में उतरता है, इस बार एक बेसबॉल बैट के साथ, जैसे अब वो सीधी कार्रवाई के लिए तैयार है।
बेसबॉल बैट, दिलचस्प।
हाँ, वो उस दूसरी अति यथार्थवादी दुनिया में नोबोरू वटाया का सामना करता है और उसे हरा देता है, मार गिराता है। ठीक उसी वक्त असल दुनिया में नोबोरू को रहस्यमय स्ट्रोक आता है और वो कोमा में चला जाता है।
तो तोरू जीत जाता है एक तरह से?
एक तरह से हाँ, लेकिन वो कुएं में फंस जाता है। बाद में सिनामैन उसे बचाता है, वो बाहर आता है कमजोर लेकिन बदला हुआ।
और कुमिको, उसका क्या होता है?
कुछ समय बाद उसे कुमिको का आखिरी ईमेल मिलता है सिनामन के जरिए। वो बताती है कि उसने भी अपने अंदर के नोबरू हटाया को मार दिया है, उस गंदगी से खुद को आजाद कर लिया है।
तो वो वापस आती है?
नहीं, वो मानती है कि अब वो तोरू के पास वापस नहीं लौट सकती। खुद को अयोग्य महसूस करती है। वो बस इतना चाहती है कि तोरू उसे याद रखे।
तो अंत थोड़ा दुखद भी है।
हाँ, मीठा कड़वा सा है। कहानी खत्म होती है तोरू के सुबह की रोशनी में बैठे हुए। उसने बहुत कुछ खोया है पर शायद खुद को पा लिया है। एक नया तोरू है वो
भी। इस कहानी में कौन से बड़े विचार या थीम उभर कर आते हैं? एक तो साफ है पहचान की खोज।
बिल्कुल, तोरू का सफर खुद को पाने का ही सफर है, निष्क्रियता से सक्रियता तक। इसके साथ जुड़ा है वास्तविकता का सवाल।
वास्तविकता मतलब क्या सच है क्या नहीं?
हाँ, हमारी ये रोजमर्रा की दुनिया ही सब कुछ है या इसके परे भी कुछ है? वो कुआ जैसे दो दुनियाओं के बीच का पुल है। ये दिखाता है कि जिसे हम सच मानते हैं वो शायद उतना ठोस ना हो। सपने, यादें, किस्मत, ये सब हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं, अनदेखी ताकतें।
और इतिहास का जिक्र बार बार आता है, खासकर लेफ्टिनेंट मामिया की कहानियों के जरिए। इसका क्या महत्व है?
ये बहुत जरूरी थीम है। मामिया की कहानियां जापान के उस अतीत की याद दिलाती हैं जिसे शायद भुला दिया गया है, युद्ध की क्रूरता, अत्याचार। मुराकामी शायद ये कह रहे हैं कि जब हम इतिहास के ऐसे काले अध्यायों को दबा देते हैं तो वो गायब नहीं होते बल्कि जहर बनकर रिसते रहते हैं सतह के नीचे। नोबोरू वटाया जैसी बुराई शायद उसी दबे हुए इतिहास का नतीजा है। अगर हमें आज ठीक होना है व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, तो उस अंधेरे का सामना करना पड़ेगा।
ये गहरा कनेक्शन है। अकेलापन भी एक बड़ा थीम लगता है, लगभग हर किरदार अकेला है।
हाँ, अलगाव, अकेलापन बहुत गहरा है। तोरू और कुमिको के बीच भी वो संवाद की कमी दिखती है। मैं कसहारा अकेली है, मामिया अतीत में कैद है।
तो क्या कोई उम्मीद नहीं है जुड़ने की?
नहीं, ऐसा नहीं है। उम्मीद की किरणें हैं, अजीब और छोटे छोटे ही सही, पर गहरे रिश्ते बनते हैं तोरू और मैं के बीच, तोरू और सिनामन के बीच। शायद सच्चा रिश्ता इस टूटी दुनिया में मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, जिंदा रहने के लिए जरूरी है।
और वो विंडअप बर्ड, किताब का नाम भी उसी पर है, वो क्या है, उसकी आवाज का क्या मतलब है?
विंडअप बर्ड यानी चाबी भरने वाला पक्षी। वो दिखता नहीं, बस उसकी अजीब सी मशीन जैसी क्रिक क्रिक आवाज सुनाई देती है खास पलों में।
हाँ,
जैसे कोई अनदेखी घड़ी में चाबी भर रहा हो। वो शायद, हाँ वो शायद किस्मत के पहिए के घूमने का, दुनिया के उन अनदेखे नियमों या तंत्र का प्रतीक है जो हमारी जिंदगी को चलाते हैं,
एक प्रवाह जैसा।
हाँ, तो रू को अक्सर लगता है कि वो किसी अनदेखी धारा, किसी प्रवाह में बह रहा है। तो सवाल ही उठता है, क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं या हम अपनी राह खुद चुन सकते हैं? किताब इस सवाल को भी हमारे लिए छोड़ जाती है।
इन गहराइयों तक ले जाने के लिए मुराकामी कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल करते होंगे। लिखने का तरीका कैसा है?
हाँ, कहानी तोरू की जबानी है यानी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। हम सब कुछ उसकी नजरों से देखते हैं, उसकी हैरानी, उसका डर, उसका कन्फ्यूजन महसूस करते हैं,
उसका नजरिया।
हाँ, और उसका अंदाज बड़ा शांत सपाट सा है जिसे डेड पैन कहते हैं, जो अजीब घटनाओं के सामने और भी असरदार लगता है, कभी कभी मजाकिया भी।
और कहानी का स्ट्रक्चर सीधा है या
नहीं? सीधा बिल्कुल नहीं, रेखिक नहीं है। कहानी टुकड़ों में खुलती है जैसे कोई पहेली, कोई मोज़ेक जोड़ रहा हो। मामिया या नटमेग की लंबी कहानियां बीच बीच में आती हैं जो मुख्य कहानी को एकदम रोक देती हैं, लेकिन असल में वो उसे नए मायने देती हैं, अतीत और वर्तमान को जोड़ती हैं।
और भाषा, क्या वो भी बहुत काव्यात्मक या मुश्किल है?
नहीं, भाषा तो दिखने में बड़ी सरल है, आम बोलचाल जैसी, लेकिन उस सरलता के पीछे गहरी फिलोसफी और भावनाएं छिपी हैं। मुराकामी प्रतीकों का खूब इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो सूखा कुआं।
हाँ, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है।
वो अवचेतन मन या किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है। पानी या उसका ना होना भी बार बार आता है, जो शायद चेतना या यादों के प्रवाह का प्रतीक है। तोरू के गाल का वो नीला निशान,
उस दूसरी दुनिया से उसकी जुड़ाव का सबूत।
बिल्कुल, और हाँ, वो गायब होने वाली बिल्लियां, वो तो मुराकामी का सिग्नेचर स्टाइल है, एक उत्प्रेरक जो इशारा करती हैं कि अब रोजमर्रा के नियम लागू नहीं होंगे, कुछ अजीब होने वाला है।
सब मिला के पढ़ने वाले पर इसका क्या असर होता होगा, कैसा अनुभव है इसे पढ़ना?
ये एक गहरा डुबो देने वाला अनुभव है। शुरू में शायद थोड़ा अजीब लगे, भटका हुआ महसूस हो, आप सोचते हैं कि हो क्या रहा है।
हाँ, कन्फ्यूजिंग।
हाँ, लेकिन धीरे धीरे आप कहानी की अपनी लय, उसके अपने तर्क में खिंचते चले जाते हैं। एक रहस्य और बेचैनी का माहौल बना रहता है। गति जानबूझकर धीमी रखी गई है, लेकिन बीच बीच में चौंकाने वाली हिंसा या अजीब सी खूबसूरती के पल आते हैं जो आपको हिला देते हैं।
और भावनात्मक रूप से क्या महसूस होता है पढ़ते हुए?
उदासी और अकेलेपन का एहसास तो रहता है काफी गहरा, लेकिन उसमें उम्मीद की किरणें भी हैं, अजीब सा मजाक, डार्क ह्यूमर भी है, और सच्चे इंसानी जुड़ाव के लम्हे भी हैं। आप तोरू के साथ उस अजीब दुनिया के आदि हो जाते हैं। और जब किताब खत्म होती है तो लगता है जैसे आप एक लंबी, गहरी और शायद थोड़ी बेचैन करने वाली नींद से जागे हों। दुनिया थोड़ी बदली भी सी लगती है।
क्या स्थायी सवाल छोड़ जाती है किताब? क्या चीज रह जाती है साथ में?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल यही कि दुनिया शायद उतनी सीधी साधी नहीं है जितनी दिखती है।
हमारी चेतना क्या है? हमारी यादों का हम पर कितना वजन है? कौन सी अनदेखी ताकतें हमारी किस्मत तय करती हैं? और क्या हम अपने अतीत का सामना किए बिना, व्यक्तिगत अतीत और सामूहिक अतीत, क्या हम सच में आजाद हो सकते हैं? ये किताब आपको अपनी असलियत पर, अपनी रियलिटी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है।
तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे हमारी छोटी सी जिंदगी, हमारा व्यक्तिगत जीवन, इतिहास की बड़ी लहरों से, बड़ी धाराओं से जुड़ा हुआ है।
हाँ,
गुंथा हुआ है।
बिल्कुल।
और शायद ये भी कि कभी कभी खुद को या खोई हुई चीज को पाने के लिए उस अंधेरे में उतरना ही पड़ता है, कुएं में, और चुपचाप इंतजार करना पड़ता है कि दुनिया की चाबी फिर से भरी जाए।
वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। ये उपन्यास एक तरह से पूछता है कि क्या हम वास्तव में उन अदृश्य धागों को समझ सकते हैं जो हमारे व्यक्तिगत जीवन को इतिहास और नियति के विशाल ताने बाने से जोड़ते हैं,
और क्या उन धागों को देखे बिना, क्या अपने अंदर के और अपने अतीत के अंधेरे का सामना किए बिना कोई सच्ची समझ या मुक्ति संभव भी है? शायद नहीं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।